नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उद्योग व शिक्षण संस्थानों में बेहतर समन्वय पर दिया बल। देश में फरवरी 2026 से अब तक एलपीजी आपूर्ति 53% से बढ़कर 90% तक पहुंची। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों व स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए करेगी 3,000 करोड़ का निवेश। और प्रदेश में हिमपात, वर्षा व ओलावृष्टि का दौर जारी। लाहौल स्पीति जिले में करीब 145 सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उद्योग व शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज लोकभवन शिमला में उनसे मिलने आए प्रख्यात शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर नवाचार, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण के केंद्र के रूप में उभरने की जरूरत है। इस दौरान शिक्षाविदों ने राज्यपाल को अपने अपने संस्थानों में चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत करवाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में फरवरी 2026 से पिछले कल तक एलपीजी आपूर्ति 53% से बढ़कर 90% हो गई है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पिछले कल 90,000 से अधिक 5 किलोग्राम वाले एफटीएल छोटे सिलेंडरों की बिक्री की गई। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2026 से अब तक करीब 3,60,000 पीएनजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनके अलावा 3,90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण करवाया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि जिले में करीब 1,000 करोड़ रुपए की पेयजल व सिंचाई योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से समयबद्ध रूप से लोगों को पेयजल व सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अग्निहोत्री ने संतोषगढ़ सीवरेज योजना के शेष कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थिति के आकलन के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इससे लोगों को घर के समीप ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोलन में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि बीते 3 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। शांडिल ने बताया कि सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और भविष्य में इस कार्यक्रम को नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पूरी जांच के उपरांत ही ये टीका लगाया जा रहा है और इसके कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए इस वित्त वर्ष के बजट में 9,666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में जुब्बल उपमंडल की कुड्डू पंचायत में एक जनसभा में बताया कि इस राशि से शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है और इस संस्थान के बनने से शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। इससे पहले उन्होंने कुड्डू पंचायत में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल 6 अप्रैल जबकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 7 अप्रैल को मंडी में होगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी चुनाव रणनीति और जनसंघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पार्टी के अनुसार इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में संगठन के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा की जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में गौवंश के पुनर्वास के लिए कई नए प्रावधान किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और इच्छुक उद्योग समूहों को किसी भी सरकारी गौसदन या गौ अभ्यारण्य को गोद लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश के उचित पुनर्वास से न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो रहा है बल्कि किसान एक बार फिर खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल देर शाम कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बंजार उपमंडल के सोझा नामक स्थान पर हुए इस हादसे में एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। ये सभी लोग दिल्ली से हिमाचल घूमने आए हुए थे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम रुक रुक कर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व निचले इलाकों में व्यापक वर्षा हुई है। राजधानी शिमला और इसके साथ लगते क्षेत्रों में दोपहर बाद से वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत में ही बेमौसमी वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। ताजा बर्फबारी से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कुल 145 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं और करीब 190 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। लाहौल क्षेत्र में 134 जबकि स्पीति में 11 सड़कें बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हैं। हालांकि जलापूर्ति योजनाओं में कोई बाधा नहीं है। जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रदेश भर में हो रही बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से फलदार पौधों और फसलों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य स्थानों पर कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जनता की मूलभूत सुविधाओं को छीनने का आरोप लगाया है। चंबा जिले के बनियाग में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी एक भी चुनावी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंबा जिले से सत्ता पक्ष के विधायक भी जनसमस्याओं को सुलझाने में विफल रहे हैं।
चंबा की ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और जो टेस्ट है वो बाहर करवाने पड़ते हैं हमारे गरीब लोगों को। जो हिम केयर योजना है उसको बंद कर दिया है, सहारा योजना है उसको बंद कर दिया है, बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन ज्वलंत समस्याओं को हमारे सत्ता के विधायक विधानसभा पटल में रखने में नाकाम रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स को पूरी तरह जनविरोधी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स जैसे फैसले पर्यटन उद्योग को सीधे प्रभावित करेंगे और प्रदेश की आय पर भी नकारात्मक असर डालेंगे। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को जनहित में तुरंत वापस लेने की मांग की है। स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती पर आज उन्हें देशभर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने बाबू जगजीवन राम के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय संयोजक कर्मवीर बौद्ध विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दलित समाज के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए बाबू जगजीवन राम ने अनेक कार्य किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उद्योग व शिक्षण संस्थानों में बेहतर समन्वय पर दिया बल। देश में फरवरी 2026 से अब तक एलपीजी आपूर्ति 53% से बढ़कर 90% तक पहुंची। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों व स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए करेगी 3,000 करोड़ का निवेश। और प्रदेश में हिमपात, वर्षा व ओलावृष्टि का दौर जारी। लाहौल स्पीति जिले में करीब 145 सड़कें अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।